मुमकिन है कि कई लोग मेरी इन बातों पर हंसें या मुझे पागल और दीवाना करार दें, क्योंकि ये बातें दुनिया की समझ से बढ़कर हैं और दुनिया इनको शनाख्त नहीं कर सकती। खासकर कदीम फ़िरकों के मुसलमान, जिनके ऐसी पेशगोइयों की निस्बत ख़तरनाक उसूल हैं। ये बात याद रखने के लायक है कि मुसलमानों के कदीम फ़िरकों को एक ऐसे महदी की इंतज़ार है जो फ़ातिमा मादरे हुसैन की औलाद में से होगा, और नीज़ ऐसे मसीह की भी इंतज़ार है जो उस महदी से मिलकर मुखालिफान इस्लाम से लड़ाइयाँ करेगा। मगर मैंने इस बात पर ज़ोर दिया है कि ये सब ख़यालात लगव और बातिल और झूठ हैं, और ऐसे ख़यालात के मानने वाले सख्त गलती पर हैं। ऐसे महदी का वजूद एक फ़र्ज़ी वजूद है जो नादानी और धोखे से मुसलमानों के दिलों में जमा हुआ है, और सच ये है कि बनी फ़ातिमा से कोई महदी आने वाला नहीं, और ऐसी तमाम हदीसें मौजू और बेअसल और बनावटी हैं जो गालिबन अब्बासियों की सल्तनत के वक्त में बनाई गई हैं। और सही और रास्त सिर्फ़ इस कदर है कि एक शख्स ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर आने वाला बयान किया गया है जो ना लड़ेगा और ना खून करेगा, और गुर्बत और मिस्कीनी और हिल्म और बराहीन शाफिया से दिलों को हक़ की तरफ फेरेगा। सो खुदा ने खुले खुले कलाम और निशानों के साथ मुझे खबर दी है कि वो शख्स तू ही है, और उसने मेरी तस्दीक के लिए आसमानी निशान नाजिल किए हैं, और गैब के भेद और आने वाली बातें मेरे पर जाहिर फरमाई हैं, और वो मारिफ मुझको अता किए हैं कि दुनिया उनको नहीं जानती। और ये मेरा अकीदा कि कोई खूनी मादी दुनिया में आने वाला नहीं, तमाम मुसलमानों से अलग अकीदा है, और मैंने इस अकीदे को अपनी तमाम जमात और लाखों इंसानों में शाये किया है, और ये मुसलमानों की उम्मीदों के बरखिलाफ़ है। बिलाशुबा उनके अकीदे ऐसे थे जो वहशियाना जोशों को पैदा करते और तहजीब और शाइस्तगी से दूर डालते थे, और गौर करने वाला समझ सकता है कि ऐसे अकीदों का इंसान एक ख़तरनाक इंसान होता है। सो खुदा ने जो रहीम करीम है मेरे जहूर से सुलहकारी की बुनियाद डाली और मेरी जमात के दिलों को इन बेहुदा अकीदों से ऐसा धो दिया है जैसे कपड़ा साबुन से धोया जाए। बस यही वजह है कि ये लोग मुझसे अदावत रखते हैं, और जिस तरह यहूद की उम्मीदों के मुआफ़िक हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम बादशाह होकर ना आए और ना गैर कौमों से लड़े, आखिर यहूद ने उन पर ज़ुल्म करना शुरू किया और कहा कि ये वो नहीं है जिसका हमें इंतज़ार था। यही सबब इस जगह पैदा हो गया। हाँ, इसके साथ दूसरे इख्तलाफ भी हैं। चुनाचे इन लोगों का एक ये भी मज़हब है कि हत्तुल मकदूर गैर कौमों से कीना रखा जाए, और अगर मौका मिले तो उनका नुकसान भी किया जाए। मगर मैं कहता हूँ कि हरगिज़ कोई आदमी मुसलमान नहीं बनता जब तक कि दूसरों की ऐसी हमदर्दी नहीं करता जैसा कि अपने नफ्स के लिए। और मेरी यही नसीहत है कि दिलों को साफ करो और तमाम बनी नौ की हमदर्दी इख्तियार करो, और किसी की बदी मत चाहो, कि आला तहजीब यही है। अफसोस कि ये लोग दूसरी कौमों से इंतकाम लेने के लिए सख्त हरीस हैं, मगर मैं कहता हूँ कि अफ़व और दरगुजर करो और कीनावर और मुनाफिक तबा मत बनो। ज़मीन पर रहम करो ता आसमान से तुम पर रहम हो। और मैंने न सिर्फ कहा बल्कि अमली तौर पर दिखलाया, और मैंने हरगिज़ पसंद नहीं किया कि जो शख्स शर का इरादा करता है उसके लिए मैं भी शर का इरादा करूं। मसलन डॉक्टर क्लार्क ने एक दामे कत्ल का इल्ज़ाम मेरे पर लगाया था जो अदालत में साबित ना हुआ, बल्कि उसके बरखिलाफ़ कराइन पैदा हुए। तब कप्तान डगलस साहेब मजिस्ट्रेट ज़िला गुरदासपुर ने मुझसे दरियाफ्त किया कि क्या आप डॉक्टर क्लार्क पर नालिश करना चाहते हैं, तो मैंने इन शराह सदर से कहा कि नहीं, बल्कि मैंने उन ईसाइयों पर नालिश करने से भी एराज़ किया जो अदालत की तहकीक की रूह से मुलज़म ठहरे थे। अगर अफ़व और दरगुजर मेरा मज़हब ना होता तो इस कदर दुख उठाने के बाद मैं ज़रूर नालिश करता। फिर जब अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर के ज़रिए से इस निवाह के मुसलमानों ने रिसाला उम्महातुल मोमिनीन के मुसन्निफ़ पर मुआख़ज़ा कराना चाहा, और इस मतलब के लिए बहजूर साहेब लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर कई मेमोरियल भेजे और बहुत जोश ज़ाहिर किया, तो उस वक्त भी मैंने उनके बरखिलाफ़ मेमोरियल भेजा और साफ लिखा कि हम मुअल्लिफ़ उम्महातुल मोमिनीन से हरगिज़ इंतकाम नहीं चाहते। हाँ, माकूल तौर पर रद्द लिखना हमारा फ़र्ज़ है। सो इन उमूर में हमेशा से इन लोगों और उनके मौलवियों से मेरा इख्तलाफ रहा है, जिससे उनको बड़ा रंज है, मगर मैं इनसे कुछ दुश्मनी नहीं रखता। नोट: डॉक्टर क्लार्क के मुकदमे में जब मौलवी मोहम्मद हुसैन डॉक्टर क्लार्क की तरफ से गवाह होकर आया, तो मेरे वकील मौलवी फजल दीन साहब ने मोहम्मद हुसैन की निस्बत एक ऐसे सवाल की मुझसे इजाज़त चाही, जिससे अदालत में मोहम्मद हुसैन की बहुत जिल्लत होती थी। मैंने उनको ऐसे सवाल से मना कर दिया और रोक दिया। अगर मैं दुनिया में किसी से दुश्मनी रखता तो क्यों ऐसा करता? मिन्हू: और बहरहाल उनको काबिल रहम जानता हूँ, और उस शख्स से ज़्यादा काबिल रहम कौन शख्स हो सकता है जो सच्चाई और रास्ते की राह को छोड़ता है। एक इख्तिलाफ़ अकीदा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की वफ़ात की निस्बत है, जिससे ये लोग हमेशा अफरोख्ता रहे हैं। मैंने एक वसी तहकीकात से साबित किया है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए हैं, और मुझे बड़े पुख्ता सबूत इस बात के मिले हैं कि आपको खुदा ताला ने सलीब से निजात देकर हिंदुस्तान की तरफ उन यहूदियों की दावत के लिए रवाना किया, जो बुख्त नसर के हाथ से मुतफर्रक होकर फारस और तिब्बत और कश्मीर में आकर सकूनत पजीर हो गए थे। चुनाचे आपने इन मुल्कों में एक मुद्दत तक रहकर और पैगाम इलाही पहुँचा कर आखिर श्रीनगर में वफात पाई, और आपका मज़ार मुकद्दस श्रीनगर महल्ला खानियार में मौजूद है, जो शहज़ादा नबी यूज़ आसफ़ की मज़ार कहलाती है। नोट: कश्मीरियों की बाज़ मुअज़्ज़ज़ कौमों के नाम के साथ जीव का लफ्ज़ एक अबदी कौमी यादगार है, जो उनको बनी इसराइल साबित करती है, क्योंकि जीव के माने यहूदी ही के हैं, और ये लफ्ज़ जीव बमाना यहूदी अंग्रेज़ी में भी इसी तरह बनाया गया है। इस ज़बरदस्त सबूत का कौमी नामों की तर्ज़ मुशाबहत के अलावा डॉक्टर बर्नियर, मशहूर फ्रांसीसी सयाह, ने अपने सफ़रनामे में ज़बरदस्त दलाइल और नीज़ बड़े बड़े मुहक्किकों की शहादत से साबित किया है कि अहले कश्मीर असल में बनी इसराइल ही हैं। मिन्हो: यसू का नाम जीसस के लफ्ज़ की तरह इख्तलात ज़ुबान की वजह से यूज़ आसफ़ हो गया। चौथी शाख ये है कि इन दावों के बाद कौम के उलमा ने मेरे साथ क्या बर्ताव किया। इसकी तफसील ये है कि मेरे दावा मसीह मऊद को सुनकर और इस बात से इत्तला पाकर कि मैं उनके उस महदी के आने से मुनकिर हूँ, जिसकी निस्बत बहुत से वाशियाना किस्से उन्होंने बना रखे हैं और ज़मीन पर खून की नदियाँ बहाने वाला उसको माना गया है, इन मौलवियों में से एक शख्स मोहम्मद हुसैन नामी ने, जो एडिटर रिसाला इशात सुन्ना और साकिन बटाला ज़िला गुरदासपुर है, मेरे पर एक कुफ्र का फतवा लिखा और बहुत से मौलवियों के उस पर दस्तखत कराए और मुझे काफिर और दज्जाल ठहराया। यहाँ तक कि ये फतवा दिया गया कि ये शख्स वाजिबुल कत्ल है और इनका माल लूट लेना जायज़, और इनकी औरतों को जबरन अपने कब्ज़े में लेकर उनके साथ निकाह कर लेना, ये सब बातें दुरुस्त हैं बल्कि मुजिब सवाब हैं। नोट: मोहम्मद हुसैन बटालवी का असल मज़हब यही है कि महदी लड़ाइयाँ करने वाला आने वाला है, मगर वो गवर्नमेंट को महज झूठ के तौर पर यह कहता है कि ऐसे महदी का मैं कायल नहीं हूँ, हालांकि वो बारहा जाहिर कर चुका है कि कायल है। अगर गवर्नमेंट दूसरे मौलवियों को जमा करके पूछे कि ये शख्स उनके पास महदी की निस्बत क्या अकायद बयान करता है, तो जल्द साबित हो जाएगा कि ये शख्स गवर्नमेंट को क्या कहता है और अपने भाइयों यानी दूसरे उलमा को महदी के बारे में क्या कहता है। मिन्हो: चुनाचे इश्तहार मौर्रखा 29 रमज़ान 1308 हिजरी मतबूआ मतबा हक्कानी लुधियाना और रिसाला सैफ़ मसलूल मतबूआ मतबा एजर्टन प्रेस रावलपिंडी की पुश्त पर, जो मोहम्मद हुसैन की तहरीक से लिखे गए हैं, ये दोनों फतवे मौजूद हैं, मगर जब ट्रोबे गवर्नमेंट अंग्रेज़ी से इन फतवों पर अमल दरामद ना हो सका तो मोहम्मद हुसैन ने एक और तदबीर सोची। देगर इशात सुन्ना नंबर 5 जिल्द 18 सफ़ा 146 व 154 व 155। मिन्हो: कि उस शख्स को नहायत सख्त गालियों और दिल आज़ार कलिमात से हमेशा रंज देना चाहिए, जैसा कि उसने अपने रिसाला इशात सुन्ना मतबूआ 1898 में कई जगह इस बात का खुद इजहार किया है اس قسم کی گالیوں اور بدزبانیوں کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ایک چالاک شخص کو جس کا نام محمد بخش جعفر زٹلی ہے اور لاہور میں رہتا ہے مقرر کیا اور ہر ایک قسم کے گندے اشتہار خود لکھ کر اس کے نام پر چھپوائے اور در پردہ وہ سب کاروائی خود محمد حسین نے کی اور اس اپنی کاروائی سے وہ لوگوں کو اطلاع بھی دیتا رہا ہے اور اپنے رسالوں میں بھی شیخی کے طور پر یہ کام اپنی طرف منسوب کرتا رہا ہے اور یہ تمام اشتہارات جو نہایت چالاکی اور بدزبانی سے ایک سال سے یا کچھ زیادہ عرصے سے محمد حسین شائع کر رہا ہے یہ نہایت اوباشانہ طریق سے گندے سے گندے پیرائے میں لکھے جاتے ہیں اور ان اشتہاروں میں کوئی پہلو میری بے عزتی اور بے آبروئی کا اٹھا نہیں رکھا اور میرے تمام ننگ و ناموس کو خاک میں ملانا چاہا ہے اور ایسی گندی اور ناپاک تہمتوں پر مشتمل ہیں کہ میں گمان نہیں کر سکتا کہ اس سختی اور بے شرمی کا برتاؤ کبھی ذلیل سے ذلیل قوم کے آدمی نے کسی اپنے مخالف کے ساتھ کیا ہو۔ ان اشتہارات میں سے جو 12 اگست 1898 کا اشتہار ہے جو مطبعہ تاج الہند میں چھپا ہے، ایسا ہی ایک دوسرا اشتہار جو 25 ستمبر 1898 میں مطبعہ فخر الدین پریس لاہور میں تباہ ہوا ہے اور ایسا ہی ایک تیسرا اشتہار اور زمیمہ 11 جون 1897 کا جو اسی مطبعہ میں تباہ ہوا ہے۔ ان چاروں کا نمونے کے طور پر کسی قدر مضمون اس جگہ درج کرتا ہوں تا حکام کو معلوم ہو کہ کہاں تک میری ذلت کا ارادہ کیا گیا ہے اور نہ ایک ماہ نہ دو ماہ بلکہ ایک سال سے ایسے گندے اشتہار جاری کر رہے ہیں جن کے متواتر زخموں کے بعد مجھے اشتہار 21 نومبر 1898 لکھنا پڑا۔ نوٹ: یہ اشتہار مباحلہ 21 نومبر 1898 اس وقت شائع نہیں کیا جب تک کہ کئی اشتہار بدرخواست مباحلہ لوگوں کی طرف سے متواتر میرے پاس نہیں پہنچے۔ چنانچہ علاوہ ان اشتہارات کے ایک چٹھی جعفر زٹلی مورخہ 19 نومبر 1898 اور 5 اشتہارات متواتر یکے بعد دیگرے مباحلے کی درخواست کے متعلق محمد حسین نے آپ شائع کرائے ہیں، منہو، جس میں جھوٹے کی ذلت خدا تعالی سے طلب کی ہے، اور محمد حسین کے یہ چاروں اشتہار جو جعفر زٹلی کے نام پر نکالے گئے مجھے بے عزت کرنے کے لیے، ان میں نہایت سخت اور گندے اور ناپاک الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی میری نسبت یہ لکھا ہے کہ اس شخص کی جورو کی اس کے بعض مریدوں سے آشنائی ہے، اور پھر ٹھٹھے سے اپنے تئیں ملہم قرار دے کر میری نسبت لکھا ہے کہ ہمیں الہام ہوا ہے کہ اس شخص کی جورو محمد بخش جعفر زٹلی سے نکاح کرے گی، اور پھر میری نسبت ٹھٹھے سے لکھتا ہے کہ ہمیں الہام ہوا ہے کہ قادیانی ایک سخت مقدمے میں ماخوذ ہو کر پاب جولاں قید فرنگ میں ڈالا جاوے گا اور جلا وطن ہوگا اور حالت قید میں بالکل دیوانہ اور مخبت الحواس ہو جائے گا اور اس کے نیچے سے ایک ناسور کا پھوڑا پیدا ہوگا اور اس کو کوڑ ہو جائے گا اور اس کے جسم میں بے شمار کیڑے پیدا ہوں گے اور اس کی صورت مطلقاً مسخ ہو جائے گی اور اس کی پیاری بیوی بعض مریدوں سے آشنائی کرے گی اور پھر وہ آوارہ ہو کر قادیانی سے طلاق حاصل کرے گی اور پھر محمد بخش جعفر زٹلی سے اس کا نکاح ہوگا اور مولوی ابو سعید محمد حسین نکاح خواہ ہوں گے۔ نوٹ: مولوی محمد حسین نے اپنے اشاعت السنہ 1898 میں بڑے تمسخر کے طور پر کہا ہے کہ ان کی بیوی کا محمد بخش سے میں نکاح پڑھوں گا، منہو، اور آخر کار قادیانی آنکھوں سے اندھا، کانوں سے بہرا، زبان سے گونگا، خودکشی کر کے فی النار و فی السقر ہو جائے گا، یعنی جہنم میں پڑے گا، اور پھر ٹھٹھے کے طور پر اخیر میں لکھتا ہے کہ یہ سب الہام پورے ہو چکے، صرف نکاح باقی ہے، اور پھر میری نسبت تیسرے اشتہار میں ٹھٹھے سے لکھتا ہے کہ سنا ہے کہ اس شخص کو طاعون ہو گئی اور کتوں نے اس کا گوشت کھایا، اور پھر جولائی 1897 کے پرچے میں میری تصویر ریچھ کی بنائی ہے۔